नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए अलग अलग नीतियां बनाने का निर्णय लिया। उत्तराखंड विधानसभा ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दी और पौड़ी जिले के पाबू के निकट कलगड़ी में आपदा से क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नया बैली ब्रिज छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह, और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने कल ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। यह विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
मनी गेम्स के कारण ऐसे एक्सट्रीम केसेस कई सारे हुए हैं जिसमें युवाओं ने ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा कमाया, कमाने के बाद में सुसाइड की तरफ आगे बढ़े। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो इसको पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा इश्यू माना है और डिसऑर्डर की तरह से उसको घोषित किया है। तो इस तरह की परिस्थितियों में जरूरी था कि एक ऐसा बिल लाया जाए जो कि समाज के लिए जो उपयोगी है उसको प्रमोट करे, एनकरेज करे, और जो समाज के लिए हानिकारक है उसको रोके।
श्री वैष्णव ने बताया कि विधेयक में 3 खंड हैं, ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स।
ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेमिंग, तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेमिंग। ई स्पोर्ट्स में लोग एक टीम में खेलते हैं और अब ओलंपिक्स और एशियाड जैसे बड़ी प्रतियोगिताओं में भी ई स्पोर्ट्स की चर्चा होने लगी है। दूसरा, ऑनलाइन सोशल गेम्स हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और जिसमें समाज पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसको भी प्रमोट किया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए अलग अलग नीतियां बनाएगी। इसके तहत कौशल विकास, सरकारी व निजी संस्थानों में नौकरी के साथ ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। चमोली जिले के भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, विदेशी भाषाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का फैसला लिया है। साथ ही महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रारंभिक चरण में प्रत्येक ब्लॉक में 200 लोगों को मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी से संबंधित प्रशिक्षण देने पर भी सहमति बनी। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता संशोधन योजना 2025 को भी मंजूरी दी, जिसमें पॉक्सो पीड़ितों के लिए न्यूनतम और अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड साक्ष्य संरक्षण योजना 2025 को भी स्वीकृति दी गई है। इस योजना से कानूनी मामलों में साक्ष्यों की सुरक्षा, गोपनीयता और आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे बिना किसी भय या दबाव के गवाही दे सकें। 170 किलोमीटर लंबी टनकपुर बागेश्वर नई रेलवे लाइन के सर्वे का काम पूरा हो गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। लोकसभा में यह जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 48,692 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि परियोजना को राज्य सरकार, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक है, जिसके बाद ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में रेल अवसंरचना के लिए बजट आवंटन 2009 से 2014 की तुलना में लगभग 25 गुना बढ़कर इस वित्तीय वर्ष में 4,641 करोड़ रुपये हो गया है। अब तक राज्य में 216 किलोमीटर लंबाई की 3 नई रेल लाइनों को 40,384 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। देवबंद रोड की रेल लाइन पूरी हो चुकी है, जिससे दिल्ली देहरादून की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के 11 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए चुना गया है। इनमें देहरादून, हरिद्वार, हर्रावाला, काशीपुर, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लालकुआं, रामनगर, रुड़की, टनकपुर शामिल हैं।
समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उत्तराखंड विधानसभा ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक राज्य में पहली बार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय को भी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसा शिक्षा व्यवस्था में छात्रवृत्ति वितरण और मिड डे मील में अनियमितताओं के साथ पारदर्शिता में कमी रही है। विधेयक लागू होने के बाद मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम और गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम 1 जुलाई 2026 से समाप्त हो जाएंगे। इस विधेयक में गुरुमुखी और पाली भाषा का अध्ययन भी संभव होगा। इसके तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा। मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा और वित्तीय गड़बड़ी या पारदर्शिता की कमी पाए जाने पर मान्यता वापस ली जाएगी। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला बुआखाल धुमाकोट रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पाबो के निकट कलगड़ी में बने नए बेली ब्रिज से छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। पश्चिमी नयार नदी में आई बाढ़ से 1970 में बना यह पुराना पुल बह गया था, जिससे पौड़ी जिले के कई क्षेत्र जिला मुख्यालय और कुमाऊं मंडल से कट गए थे। नए पुल से अब यातायात संपर्क पुनः स्थापित हो गया है। लोक निर्माण विभाग धुमाकोट के अनुसार अगले 5 दिन में पुल बड़े वाहनों के लिए भी खोल दिया जाएगा। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि 45 मीटर स्पान का बेली ब्रिज रिकॉर्ड समय में बनाया गया है।
यहाँ पे 6 अगस्त को अतिवृष्टि हुई थी, उसमें ये कलगड़ी का पुल वॉश ऑफ हो गया था और अगले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस एरिया का विजिट किया था और उन्होंने तत्काल इसे सुचारू करने के लिए भी निर्देश दिए थे। और इसके क्रम में जो हमारा ऋषिकेश से बेली ब्रिज का सामान मंगाया गया और ये पुल एक्चुअली 20 मीटर का था, लेकिन ये वॉश ऑफ होने के बाद इसका स्पैन 45 मीटर का हो गया था। तो दिन रात काम करके पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीजन द्वारा इसको कम्प्लीट किया जा चुका है पूरे 45 मीटर का, और इसको छोटी गाड़ियों के लिए खोला भी जा चुका है। तो जो हमारा मेन एक लाइफ लाइन था धुमाकोट को जोड़ने वाली मेन नेशनल हाईवे, वो अब सुचारू हो जाने से आम जनमानस को इसका काफी लाभ होगा।
रुद्रप्रयाग में भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून की ओर से जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। BIS देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने अधिकारियों को भारतीय मानक गुणवत्ता प्रबंधन और उपभोक्ता अधिकारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक केवल उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि उपभोक्ता सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से भी जुड़े हैं। इस दौरान जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने सभी विभागों को BIS प्रमाणित उत्पाद खरीदने और स्थानीय इकाइयों को प्रमाणन के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने BIS से स्वयं सहायता समूहों और MSME इकाइयों को प्रमाणन की राह दिखाकर स्थानीय उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाए जाने की अपेक्षा की। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को चुनाव की मतगणना की वीडियोग्राफी और CCTV फुटेज आज प्रवाहन 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में दिखाई जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की उम्मीदवार रही पुष्पा नेगी द्वारा पुनः मतदान की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया था। याचिका में मतपत्रों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि सरकार के एक अधिवक्ता के साथ दोनों उम्मीदवारों के 3-3 वकीलों को यह फुटेज दिखाई जाए। उत्तराखंड के तीनों राज्य विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव एक ही दिन कराए जाएंगे। चुनाव की तिथि 15 से 27 सितंबर के बीच सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होने के बाद घोषित की जाएगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए अलग अलग नीतियां बनाने का निर्णय लिया। उत्तराखंड विधानसभा ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता के लिए उत्तराखंड अल्पशिक्षक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दी और पौड़ी जिले में पाबो के निकट कलगड़ी में आपदा से क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नया बेली ब्रिज छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन प्रवाहन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा।